السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، فریش رکھے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دور قرآن 2025. بلیف بھی میں ابھی بھی سوچتی ہوں پھر بولتی ہوں، میری زبان پہ ابھی تک 2025 نہیں آ رہا. میں اپنے ذہن سے 5 سال پیچھے ہوں گی، لیکن ماہوں سال گزرتے جا رہے ہیں، وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا اور ہم قرآن کو تھامے ہوئے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے جن کو پچھلے سال ہماری آنکھیں دیکھتی تھی، آج نہیں. چلیے آج شروع میں اگر اللہ نے دل میں ڈال دیا تو اپنے ان سارے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں. میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو میں نے اس سال میں اپنی ایک پھپھو کو کھویا اور ایک ماموں کو، اور اسی طرح اور بھی ریلیٹیوز فیملی میں ارد گرد جو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو پہلے بھی جا چکے اس دنیا سے ہمارے اپنے پیارے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمتیں کریں. آئیے آج دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعصمہ من عذاب النار. میں نے واحد کے سیگے سے پڑھا اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہر پیارے کو جو اللہ کے پاس پہنچ چکا، ان سب کو ون بائی ون انڈیویجولی اللہ تعالیٰ یہ دعا لگا دے. کل کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا، آج اگر ہم کسی کے لیے کریں گے، لیکن اعمال ہم سب کو اپنے اپنے خود کرنے ہیں. تو مرنے کے بعد تو صرف دعاؤں ہی کی محتاجگی ہوتی ہے، یا پھر انسان کا صدقہ جاریہ جو زندگی میں اس نے کچھ کیا اور بعد میں اس کے نام پہ آتا گیا، اور اس کے بعد پھر صدقہ جاریہ کے ساتھ اولاد. اللہ اولادوں کو بھی نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بہترین ورثہ دے کر جائیں. لوگ وراثت چھوڑتے ہیں، آپ نے ورثہ چھوڑنا ہے. لکھیں، چلیے آج کی یہی صحیح، انہیریٹنس ورسز لیگیسی. تو آج ہم نے ایک نیت کرنی ہے اس بارے کے ساتھ کہ میں نے لیگیسی چھوڑنی ہے. پارہ نمبر 16 جو ہمارے سامنے ہے اس وقت، اس کو پڑھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سراج منیرا، اللہ کے نبی کی لیگیسی تو سوچئے. آج دل بھر آیا یہ سوچ کے کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا، کتنے بچے، کتنی زمینیں، گھر اپنا تھا، اور یہ اور وہ اور یہ کچھ. اور پھر اس میں کچھ ہماری نیکیاں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. قیامت کا دن ہوگا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کا پتہ چلے گا کیا چھوڑا. ہم آج کے فگر کو ایک معیار بنا لیں، 2 بلین مسلمان الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو سراج منیرہ کی بات نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے 2 بلین لوگوں کی کلمے کی لیگیسی چھوڑی، ان کی نمازوں کی، ان کے روزوں کی، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے، جو ایک روایت کے مطابق سب سے چھوٹی نیکی قرار دی جاتی ہے، ایمان کی شاخوں میں ایک شاخ ہے، تو اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جائے گا. کیونکہ حدیث ہے کہ من دال علی الخیر کفاعلیہ، جس نے بھی کسی کو بھلائی کی دعوت دی، پھر اس کے بعد وہ جو عمل کرے گا اس کا اجر نہ صرف یہ کہ وہ دعوت دینے والے کو ملے گا، بلکہ اس کے بعد پیچھے استادوں تک یہ سلسلہ جاتا ہے، اور پھر استادوں کے استاد معلم عربی، جن کو آج ہم محمد عربی کے نام سے جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لیگیسی ملی، اللہ مجھے آپ کو अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हमारे बाद विरासत से ज़्यादा वरसा छुटे। आइए देखते हैं कि मोहम्मद अरबी में हम कहाँ खड़े हैं। पिछले सेशन में हमने चार जुगनू देखे थे कि जिनको माहौल के असर ने भी आलूदा नहीं किया। लेकिन आज हम जितना भी रोना रो लें कि हालात बड़े ख़राब, गैरों के झंडे, नॉन मुस्लिम्स की साजिशें, अपने मुसलमानों की गफलतें, दुनिया परस्ती, वाहन, यानी आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी नज़र आने वाले या ना नज़र आने वाले फितने हैं, और हम अपनी नस्लों की फिक्र कर रहे हैं खास तौर पर सूरह काहफ पढ़ते हुए, इनका बाल का भी बीका नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह कीचड़ में गुलाब खिला देता है, अंधेरों में रोशनी आ जाती है, तो आपके बच्चों के दीन, ईमान और उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी। शर्त एक है, नंबर एक, आप खुद भी नेक रहे। हम अभी पारे के तारुफ में कुछ चीज़ों को देखेंगे, अभी समझ लें इसी को। तो ये जो चार बुजुर्ग थे ना, इन्होंने अपने अकीदे का ऐलान कर दिया कि भाई हमें ना शराब अच्छी लगती है, ना जुआ अच्छा लगता है, और ये बुतों की क्या पूजा करनी। जो समझा इसे साफ साफ बयान कर दिया। दुआ करे अल्लाह हमें भी इतनी सच्चाई दे और सच्चाई का इजहार भी दे। आज मुसलमानों को देखा गया कि भीगी बिल्लियां बने बैठे हैं और आंखों में आंखें नहीं डालते, और वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके वो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो जिसको सच समझते हैं ना, उसको बोलिए, और जिसको बोल दिया उस पर खड़े हो जाइए, और इस्तकामत के रास्ते पे जहां तक हो सके कुर्बानियां करने के लिए तैयार रहिए। इनके अपने अकीदे के ऐलान की देर थी कि कुरैश दुश्मन भी हो गए, मजाक उड़ाने लगे। वही लोग जो अब तक इनकी खूबियों के गुण गाया करते थे और उनके ख्याल में वो बेमिसाल और शराफत और इंसानियत के मेयार पे थे, अब उन्हीं में कीड़े दिखने लगे, ऐब ही ऐब नजर आने लगे। उन्हें क्या खबर थी कि एक जवान और है जो इनकी आंखों का तारा और दिल का सहारा है, जो इनको दिल से अजीज और जान से भी प्यारा है, वो भी इन्हीं का हम ख्याल और इन्हीं के दीन का आलम बरदार है। हाँ, इसने अभी ऐलान नहीं किया क्योंकि अभी वो खुद ही तन्हाइयों में बड़ा सोच रहा है और हकीकत की तलाश में सरगर्दा है, और वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बिल्कुल सोचिए ना, किसी माशरे में आप अकेले दीन की तड़प तलब रखते हैं और आप नए नए वहाँ आते हैं और उम्र भी बिल्कुल जवानी की है, तो फिर आपको लगता है भाई शहर में किसको फायदा दूं, क्या करूं, किसके साथ बैठूं, किससे दोस्ती करूं। आपको उस वक्त लग रहा होता है शहर में कोई भी नहीं है, लेकिन उसी शहर में कई दिलों के अंदर वो एक जोत जग चुकी होती है दीन की। मिसाल तो अच्छी नहीं, लेकिन जैसे कैंसर की बीमारी शुरू में नहीं दिखती ना, वो बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पे बाहर आती है और अमूमन फिर वक्त गुजर चुका होता है। अंदर पहले से किसी एक सेल के दिमाग के अंदर कुछ खुन्नस भरता है और फिर होते होते वो एक क्लस्टर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, अगर बीमारियां भी पहले से अंदर कुछ ना कुछ असरात रख के बाहर आती है ना, तो किसी के अंदर खैर, दीन से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, ये पहले अंदर आती है। कभी किसी को देखकर ये ना कहा करें इधर खैर ही कोई नहीं, इनको शौक ही नहीं, मेरे बच्चे तो बेकार हैं, इसके दोस्त भी ऐसे हैं, और मेरे मियाँ तो बिल्कुल ऐसे लोगों में बैठते हैं, मुझे अपने मियाँ के दोस्त बिल्कुल एक आंख नहीं भाते, ससुराल मेरा तो सारा ही दीन से दूर है। कभी ना कहिए, बड़ी जुर्रत चाहिए। मुझे तो लगता है दिल पे हाथ रख के कोई कह दे, मैं तो नहीं कह सकती क्योंकि मैंने अपने प्यारे नबी से यही सीखा है। हाँ, क्या कहा करे, अल्लाह अंदर की खैर बाहर ले आ और मुझे इसका जरिया बना दे। वजालना खुदा तो मोहतदीन, आप बच्चों के लिए जो दुआ करते हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह फुरकान में इबादुर रहमान की दुआएं, तो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन व जालना लिल मुत्तकीना इमामा। हमें मुत्तकियों का इमाम बना, यानी हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले भी मुत्तकी हों, आखिरी सफ़ों के नहीं पहली सफ़ों के लोग हों जो मेरे पीछे नमाज पढ़े। तो ये दुआएं काम आती हैं, लोगों में खैर होती है। हम नहीं पहुंचे, हम तकब्बुर के मारे हुए लोग उनको पहले ही फतवे दे के अपने से दूर कर चुके होते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। खैर, मक्का से 6 मील के फासले पे हिरा नाम का एक पहाड़ है जिसमें एक गार है, आज इसको गारे हिरा कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त तक कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल से फैज़याब नहीं हुए थे, इस गार में चले जाते, कई कई दिन और कई कई रातें वहीं रहते, जिस हकीकत के लिए आप बेताब थे इसका इंकशाफ करते, और जिस मार्फत की आरजू थी इसकी तलाश करते। ये जो आप यहाँ आके बैठ जाती हैं ना, और अभी आप सुबह ही तो बता रहे थे साथी कि पहले जब लफ्ज 10 या 8 या 9 सुबह का वक्त सोचते थे, सुनते थे, तो एकदम सोचते थे ये कैसे हो सकता है, और अब घड़ी देख रहे होते हैं। मेरा अपना यही हाल है ना, मुझे रात को चैन है ना दिन को चैन है, एक तड़प लगी हुई है कि अल्लाह इतनी बड़ी नेमत, तो मुझे मुसलमान मुल्क में ले आया, और फिर ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसको सारी दुनिया आइडियलाइज करती है, और हर दिन जब मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं तो मैं हैरान होती हूँ कि 10-10 हज़ार डॉलर लगा के लोग इस वक्त उम्रा कर रहे हैं। यानी आज शाम को जिन लोगों से मिलना है सिर्फ उंगलियों पे गिन लो तो वो 20 से 30 लोग हैं, और कोई आया हुआ 4 दिन के लिए, कोई 5, कोई 10। क्यों? एक तो छुट्टी नहीं होती, दूसरा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, 1,000-1,200 से ज्यादा ऊपर का तो एक एक रात का होटल है इस वक्त। तो जिसके लिए वो तड़प तड़प कर आ रहे हैं, तो हमें तो अल्लाह ने वो सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे दिया। ये एहसास नहीं मुझे असल में सोने दे रहा, सच बताऊं, क्योंकि ये जितनी बड़ी नेमत तो थी ना, उसकी जवाबदेही भी तो उतनी है ना। कुरान का एक पैगाम मस्जिदें भरी हुई हैं, आप देखे तरावियों में देखे बाहर तक उबलती हैं। तो ये जो है ना, ये अंदर तड़प होती है। अल्लाह के नबी गारे हिरा में जाकर ना यही बातें सोचते रहते थे, इनको क्या है, ये क्यों बुत पूछते हैं। और चूंकि एक बच्चा जिसने आंख खोलते ही देखा दूसरों को गलत चीजों में, तो फिर उसको बताने वाला भी तो कोई नहीं। देखे ना, आमतौर पे बच्चे बड़े मासूम अंदाज से सवाल करते, मामा पापा अल्लाह कौन है, अल्लाह किधर है, मामा मक्का क्या होता है, नबी क्या पूछते। वो लाड तो थे नहीं है, फिर जवान हो गए, अगर दादा को देख लीजिए, चाचा को, तो उन्होंने भी तो अपने इर्द गिर्द वही रिवायती दीन देखा। ये लिख लीजिए मक्का वालों का दीन रिवायती दीन था, माफ कीजिए आज हम पूरे देसी कल्चर वाले 90% लोगों का दीन भी रिवायती दीन है। हम नेल पॉलिश लगाने पे ज्यादा परेशान है किसी के कि उसने लगाई है और उसकी नमाज हुई कि नहीं, हम किसी के सिगरेट पीने पे थोड़ा ग्रज रखते हैं, पर उसकी अकीदे और तौहीद का हमें कोई फिक्र नहीं है, उसकी नमाजों का हमें कोई फिक्र गम नहीं है। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बनाकर परेशान होते भी और करते भी, लेकिन हमें बड़ी बड़ी बातों का पता नहीं। यानी जिसको एक वाक्य में हजरत ईसा की तरफ कहते ना कि तुम मच्छर छानते हो और हाथी निकल जाते हो, तो आज हमारे वाले कबायर का शिकार, फिक्र ही कोई नहीं। और छोटे छोटे बातों को दीन बना के, चाहे ये पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, उम्रा कर रहे हैं दम देना पड़ेगा, इन छोटी छोटी चीजों पर हमारी नींदें हराम हुई होती है। अपने लिए ही अमल की बात लीजिए कि पहले आपके अंदर एक सुकून आए, और अल्लाह के नबी जहाँ जाते थे ना, वहाँ ना इंसानों का शोरगुल होता था ना दुनिया के हंगामे, बिल्कुल तन्हाई और खामोशी का आलम होता, आप वहीं गौर व फिक्र में मसरूफ रहते, और जो कुछ रूखा सूखा मुयस्सर होता इसी पे कनात करते। ये थे आपके दिन और ये थी आपकी रातें, फिक्रो ख्याल की पहनाइयों में गोते लगाते, जहन और दिमाग की गहराइयों से पता पूछते, जो हक मालूम होता शौक के हाथों से पकड़ लेते, और जो बातिल मालूम होता इसे जहन से खुरच देते। एक जुमला लिख लें, फितरत से रहनुमाई ले रहे थे, और फितरत और कायनात उसी रब की है जिसका ये कुरान है। तो जिनके अगर माँ बाप नहीं भी है ना, तो वो नहीं कह सकते मैं किसी ने नहीं बताया, जिसको कि उस्ताद नहीं मिला, दूध का एक ग्लास भी उस्ताद बन जाता है उसका, कि काली भैंस वैसे ये दूध किसने निकाला, है कोई पीछे, वो कहते ना है कोई जो निजाम हस्ती को चला रहा है। तो ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं इसकी क्या हकीकत है, एक सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए आप सख्त बेचैन थे। साल पर साल गुजरते रहे और आपका यही हाल रहा, आए दिन गार में जाते रहते, और जब रमजान का महीना आता तो बिल्कुल यकसू हो जाते, रात दिन वहीं रहते, जैसे आजकल उम्रे पे आए हुए लोग रहते हैं ना, बाहर जाकर हमारी जिंदगी फिर बदल जाती है। खैर, मामूल क्या था कि गार से जब मक्का वापस होते तो सबसे पहले आप काबा जाते और इसका तवाफ करते। जी, आप ये ना सोचिए कि तवाफ करना आज हमारे दीन का हिस्सा है, पहले भी था, हज़रत इब्राहिम के दौर से चल रहा है। तो आखिरी जुमले लिखिए आज के सेशन के, दिल तो नहीं कर रहा छोड़ने को लेकिन कोई बात नहीं। और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मक्का वाले नाम के मुसलमान थे और उनके काम गैर मुस्लिमों वाले हो चुके थे, वो रिवायती मुसलमान थे बिल्कुल आज के हालात की तरह। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से समझने लगा बनाए। चलिए फिर क्या हुआ, फिर एकदम ये मक्का लोगों से कैसे भर गया, फिर इधर अल्लाह का नाम कैसे आने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं कैसे आई। अखलाके नबी था, प्यारे नबी ने दोस्त तो दोस्त दुश्मनों के भी दिल जीत लिए। अपने लिए अमल लिखिए, हमने दुश्मनों को दोस्त बनाना है, दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाना। ऐसा ही एक वाक्य आज आपके साथ शेयर करूंगी, भटका हुआ खुशकिस्मत राहे। सुमामा बिन असाल नाम का एक शख्स यमामा के इलाके का हुक्मरान था। ये इलाका आजकल के सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत है रियाज, इसके कुर्ब व जवार में वाक़े था। सुमामा इस्लाम दुश्मनी में पेश पेश था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह कत्ल करने का चैलेंज दे रखा था। आपने भी अल्लाह से इस पर काबू पाने की दुआ फरमाई थी, नोट कीजिएगा। अल्लाह के नबी को जब पता चला कि वो आपसे इतनी दुश्मनी रखता है कि चैलेंज करता है कि देखना मैं मोहम्मद की गर्दन अलग करूंगा उसके जिस्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी ख्वाहिश की कि अल्लाह फिर कभी मुझे वो मिले। क्या खूबसूरत अदब है, हम छुपते फिरते हैं ऐसे लोगों से, हाय सामना ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुआ करिए कहीं सामना हो जाए ऐसे लोगों से कि जो गलत फहमियों के शिकार होकर आज इस्लाम से दूर है। ये ऐसे लोगों को तो दावा देने का मजा आता है, बेचारे वो तो भटके होते हैं। खैर ये एक भटका हुआ राही था। बोलिए वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। एक मरतबा सुमामा उमरा करने के इरादे से निकला है। उमरा करते थे मुशरिक, बिल्कुल करते थे, बस फर्क क्या था, साथ बुत रख लेते थे एक जेब में, उसको पूछते थे कोई वहां रखा हुआ था अपने कबीले का तो जाके उसका नाम ले लेते। आज हम सेलफोन रख लेते, अपने नफ्स का बुत रख लेते। मुझे वैसे ही कभी तस्वीर तो अच्छी नहीं लगी, बनवानी खिंचानी सजानी संवारनी। शायद कभी बचपन जवानी का जो संगम होता है ना, जब सहेलियों का एक ग्रुप होता है, स्कूलों कॉलेजों की कोई भोंडी सी तस्वीर हो तो हो, मुझे कभी शौक नहीं आया। लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस वक्त होती है, पोज बना के खड़े होकर लोग हरम में काबा के आगे पीछे तस्वीर खींचते हैं, और अच्छे अच्छे लोग, बूढ़े भी बड़े भी जवान भी। मैं उस पर कोई तनकीद नहीं कर रही, लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि मैं कौन हूँ जो मैं अपनी तस्वीरें बनाऊँ। यदि मैं सोचती हूँ कि अंदर का बुत नहीं टूटता, अपने आप को अच्छा लगता देखना। तो रिवायती उम्रे बड़े आसान है, शौरी उम्रे मुश्किल है। उम्रे के लिए निकला। अब एक जुमला मैं बड़े शौर से बोलूंगी और आप प्यार से लिख लीजिए, इसकी खुशकिस्मती कि वो रास्ता भूल गया। जी कभी कभी रास्ते भूलने में भी खुशकिस्मती होती है। और वो मदीना तैयबा के करीब जा निकला। आज भी जो रियाज से इधर आते हैं तो एक ऐसा मोड़ आता है कि उधर से सीधा तो मदीना और है, और मक्का आया है तो बिल्कुल फर्क है रास्ता, जद्दा आना हो तो बिल्कुल ही फर्क है। रहमत आलम के पास जो भूल कर गया उसका भी बेड़ा पार हो गया। दुआ क्या करें आपकी इस क्लास में भी कोई भूल के ही आ जाए। कभी आपको लगता है ना किसी को बुलाए नहीं, कोई आता नहीं, करता होता ही है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, आम तौर पे भी जो हर वक्त ये दरसो तदरीस है ना, तो कई के सिस्टर शेयर करती है, मैं बड़ा कहती हूँ अपनी दोस्त को वो नहीं आती, मैंने कहती अब उनको कोई लालच दे दिया करे, आ जाओ इसके बाद खाना खाने जाएंगे, आ जाओ इसके बाद उधर जाएंगे, ऐसे ही ले आया करे। तो खैर भूला और बेड़ा पार हो गया। अल्लाह के नबी को कोई एक दफा देख लेता वल्लाही फिर दिल तो दे आता था, और दायमी कामयाबी इसका मुकद्दर बन गई। मुसलमानों के हिफाजती दस्ते हर वक्त मदीना तैयबा के अतराफ में गश्त करते रहते थे, जैसे हर जगह फौज और आर्मी करती है। तो सुमामा कैसे भटक कर मदीना पहुंचा, और मदीना पहुंचते ही हिफाजती दस्ते की रेंज में आ गया, उन्होंने इसको कैद किया। कैसी है? जैसे किसी भी मुल्क में लोग अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चूंकि ये शख्स अपने कुफर में मारूफ था, एक होता है आम बंदा और एक होता है इश्तिहारी, जिसके बारे में पहले ही खबरें हों कि जहाँ भी मिले उसको पकड़ लो, और इस्लाम दुश्मनी में इसके अजायम बड़े सख्त है, लिहाजा इसे गिरफ्तार किया और मस्जिद नबी के एक सुतून से बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुश्मन इस्लाम की गिरफ्तारी की खबर दी गई। अब जरा सपने पर लें, वो शख्स आज सामने है कि जिसका सामना करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुंतजर थे, यानी जिस बंदे की गुफ्तगू में आपको ये एटीट्यूड दिख रहा हो, जरा सोचिए उसके दिल में क्या होगा। तीन ऑफर्स देके कि कत्ल करोगे तो मेरा बदला लेने वाले पीछे बहुत है, और अगर तुम माफ़ कर दोगे तो मैं बड़ा एहसान मानने वाला बंदा हूँ, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी बातें कर रहे होते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर तुम्हें पैसा लेना है तो बोलो क्या मांगते हो। यानी आमतौर पे लोग कुछ इसी किस्म की बातें करते हैं। अब जवाब क्या होगा सिराज मुनीर का, सोचिए जरा। अल्लाह अकबर, सोचिए, गुफ्तगू देखिए, लबो लहजे पे गौर फरमाइए, और वो तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत से कितनी बेअदबी और किस कदर मुतकब्बिराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। दुनिया का कोई और हुक्मरान होता ना, उसी वक्त उस गुस्ताख की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे देता, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म, सब्र, सुबात, आला जरफी और आला अखलाक, पांच उंगलियों पे पांच अखलाक, इसका क्या कहना कि गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। कोई सख्त बात नहीं फरमाई, बल्कि सहाबा को हुक्म दिया कि इसकी खूब अच्छी मेहमानी करो। और वो एक मारूफ हदीस जो आप अक्सर अलग से सुनते हैं, बड़ी प्यारी लगती है, उन जिलो नासी मनासिला हूँ, लोगों की इज्जत करो, मेहमानी करो उनके रतबे के एतबार से। बाज़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि सहाबा को आपने इंस्ट्रक्शंस दी स्पेशली कि देखो ये अपने कबीले का सरदार है, तो इसकी ज़रा अच्छी मेहमानी करना। ये कौन कर सकता है मुझे बताइए, जो अंदर से इतना मुतमईन और इतना अल्लाह पे नजरें लगाया होता है कि उसको किसी बंदे के अच्छा कहने या बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो खाली बर्तन होते हैं ना वो बड़े बचते हैं, खाली गुब्बारे में हवा भरती है ना वो ऊपर छत पे जाके लग जाता है। कुछ लोगों की शख्सियत इतनी एम्प्टी होती है और वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। बहरहाल, खूब अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी, एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन आया, फिर आप सुमामा के पास से गुजरे, ये भी एक आपकी हिकमत भरी बात थी कि आप जान के उसके आमने सामने रह रहे थे। हर कैदी या हर आने वाले के साथ तो आप नहीं मिलते, क्योंकि लीडर सारे को तो नहीं मिल रहे होते, लेकिन कह लें कि नबी सल्लम इनको खास तवज्जो दे रहे थे। फिर पूछा सुमामा क्या हाल है, उसने फिर कहा खैरियत से हूँ, फिर वही उसने कहा अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो याद रखो मैं एक खून वाला शख्स हूँ, यानी कत्ल का बदला लिया जाएगा। वह इंताफ ताफ अन शाकिरन, और अगर तुम माफ कर दोगे तो ऐसे शख्स को माफ करोगे जो बड़ा कदरदान है। वह इंतसलु मालन तो ताहू, और अगर माल मांगोगे तो जितना मांगोगे दूंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम जैसे मसाकीन आपस में गुफ्तगू करते, अब वो साहबे सोफा थे ना हॉस्टलाइट्स, तो फारिग वक्त में तो पता नहीं हॉस्टल वाले भी क्या बातें करते हैं, और जब टीचर ना हो तो स्टूडेंट्स क्या बातें करते हैं, अब ये तो हर एक को अपना ही पता होगा ना। ये कहते हैं हम जैसे मसकीन आपस में गुफ्तगू करते तो कहते थे इसे कत्ल करके क्या मिलेगा, अमीर आदमी से माल ही ले लेना चाहिए। यानी जैसे बच्चे मशवरे देते, कहते हैं जब हमें उसके ऑप्शंस पता चली तो हम आपस में कहते क्या करना, अल्लाह के नबी ने इसको कत्ल करके, अच्छी बात है माल ले लें, कम अज कम कुछ दिनों के लिए रोटी तो मुयस्सर आ जाएगी। इससे पता चलता है कि आपकी टीम के लोग या आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके बच्चे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा नैरो होता है। बच्चे जो हैं छोटी छोटी बात करते हैं, बच्चे को खिलौना मिल जाए तो वो हो सकता है कि सोने की चीज भी फेंक दे। खैर, तीसरा दिन हुआ, आज उसी चीज का फैसला होना था। रसूलुल्लाह ने फरमाया सुमामा किस हाल में हो, इसने वही कहा खैर है, अपने वही लफ्ज दोहरा दिए, और बड़ा उसके अंदर एक एटीट्यूड था उस वक्त, फख्री अंदाज था, और खास जब अपने कबीले का जिक्र किया, माल और दौलत की कसरत, कभी के और साथ धमकी भी दे दी। सहाबा-ए-किराम मुंतजर हैं कि अब देखें कि इस गुस्ताख को सजा क्या मिलती है। वो आपकी आवाज और हुक्म की तरफ कान लगाए खड़े थे कि रहमतुल आलमीन ने हुक्म दिया इसकी रस्सियां खोल दो। फिर सुमामा से फरमाए, जाओ मैं तुम्हें बगैर किसी शर्त के रहा करता हूँ। ये तख्लाके नबी अपने ऊपर रखा करें हर चीज को, क्योंकि लकत का नलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हमारी मेड जरा 19-20 कर दे ना तो हम कुछ और करे ना करे खूब उसकी बेइज्जती तो करते हैं। फिर छोड़ते कर दादा चली जाओ, आइंदा ना मेरे घर आना। हमारी तो जुबानें बेलगाम हो जाती हैं और इस जुबान पे कुछ नहीं, चेहरे पे बस मुस्कुराहट है। खैर साहबा कैसे इतराज करे नबी पे, वो तो आपके इशारे को हुक्म समझते थे। उन्होंने तो इताअत के अजर को इबादत के अजर से बढ़ाकर फील करा दिया था सुलह हुदैबिया के मौके पे, फौरन आजाद कर दिया। सुमामा रहा हो गए, उसने अपनी सवारी पकड़ी और मदीना तय्यबा से बाहर जाने लगा। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान सलामत लेकर आ गया और मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, और दिल में अल्लाह के नबी के लुत्फ व करम का बीज पड़ चुका था। आपकी मोहब्बत उसके दिल में थी, लिख ले आजाद करके नबी ने उसको कैदी बना दिया अपने अखलाक का। ये किया करें, लोगों के दिल मोहे, लोगों को आपसे मोहब्बत हो जाए, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको एक लम्हे के लिए मिलना बैठना आपके साथ वक्त गुजारना अपने लिए खुशकिस्मती समझें। तो अपना दिल तो रहमतुल आलमीन के आला अखलाक के पास रखा है था। मुझे नबी से बाहर निकलते हुए से बेख्तियार ख्याल आया कि इतना बरगजीदा और इतना बुलंद हौसला इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मेरे अल्फाज में कितनी शिद्दत और हिद्दत थी, मगर इसके बावजूद इनका तहम्मुल इनके गुस्से पर गालिब आया और उन्होंने मुझे रहा कर दिया। जरा सा बंदा गौर तो करे, अकल तो सब में है। बच्चे को भी माँ या कोई और सख्त हाथ से पकड़े तो बच्चा रो पड़ता है। आप किसी के बच्चे को घूरना शुरू करें, देखिएगा रो पड़ेगा। बच्चों में भी सेंस है कि कौन मेरे साथ सख्ती से बात कर रहा है, कौन नरमी से। तो ये तो सरदार था। और किसी शायर ने कहा कि उसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रहाई है। अब ऐसे रहा किया है कि रहा होने को दिल नहीं करता। खैर सीरत निगार कहते हैं कि वो मदीना के एक बाग में गया, कुएं पर गुसल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर इसके कदम खुद ब खुद मस्जिद नबी की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक मस्जिद नबी में ही तशरीफ फरमा थे। आपने उसे देखा तो फरमाया, सुमामा हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम फिर चले आए। उसने अर्ज किया, आपका रहा करना भी क्या खूब रहा करना है, आपने छोड़ा तो है मगर हमेशा के लिए अपना बनाकर। अब मैं बादशाह नहीं आपका गुलाम हूँ। मेरी तमन्ना है कि मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने जान इसारों में शामिल कर लीजिए। इन लफ्जों की मिठास को महसूस कीजिए, रोए पड़े ये अल्लाह की महफिल है। अल्लाह मेरा अखलाक अच्छा हो जाए, मेरी गुफ्तार अच्छी हो जाए, मेरा लिखना बोलना सुनना चलना फिरना नबी जैसा हो जाए। कुंद छुरी नहीं थे वो मोहब्बत के साथ दिलों को मोते थे। तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल इस कायनात में आपका चेहरा मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिले नफरत था। आपके दीन को मैं नहायत बुरा समझता था, आपका शहर मेरे लिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा था। और आप याद कीजिए ऐसे कुछ जुमले हिंदा के भी थे, यानी ये ग्रज रखने वाले दुश्मन थे नबी के, कुछ माड़े मोटे दुश्मन नहीं थे, ये ठीक ठाक किस्म के दुश्मन थे। लेकिन अब आपके दामने रहमत में आ जाने के बाद आपका चेहरा मुझे कायनात के सब चेहरों से ज्यादा महबूब है। दुनिया का कोई दीन आपके दीन से बेहतर और अफजल नहीं। आपकी ये बस्ती रोए जमीन की सारी बस्तियों के मुकाबले में मेरे लिए महबूब तरीन है। तो यहाँ वो जुमला याद करें जो 13वें पारे में बोला था कि बुरे नेक हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, नेक भी बुरे हो जाते हैं, अल्लाह में उस कैटेगरी में ना रखें। फिर इसने कहा, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। सुमामा अर्ज कर रहा है, अल्लाह के रसूल मैं उम्रे की नियत से घर से निकला था, अब जबकि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मुझे उम्रे की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी ने उसकी तरबियत की, तरीका बताया उम्रे का, और वो मक्का मुकरमा चल दिया। अब सुमामा अरब के नुमाया लोगों में था। मक्का मुकरमा में क्याम के दौरान वो अल्लाह के रसूल की सिफात और इस्लाम के हवाले से मजालिस में गुफ्तगू करता रहा। करनी चाहिए ये निजी जिंदगी की बातें, ऐसी जगहों में जरूर करनी चाहिए ना, दूसरों को भी बताना मकसूद हो के देखो मदीना में कौन सा शख्स बैठा हुआ है। खैर, कुफार के लिए ये बातें बहुत तकलीफ दे थी। कहने लगे, सब आओ सुमामा। सुमामा बेदीन हो गया। ये जो लफ्ज है ना साबी, बस साबीन कुरान में दो तीन जगह आता है, तो साबी कहते थे उस शख्स को जो बाप दादा का दीन छोड़ते। सब बस उमामा। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ बल्कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की है। इस जात की कसम जिसके हाथ में सुमामा की जान है, यमामा से गंदम का एक दाना भी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर मक्का मुकरमा में नहीं आएगा। अब जरा देखिए क्या थ्रेट मिल रहा है मक्का वालों को। अपने वतन पहुंचा, इसी बात पे अमल किया और मक्का मुकरमा को अनाज की सप्लाई रोक दी। मक्का मुकरमा में कहत की कैफियत पैदा हो गई। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह को खत लिखा। देखिए क्या ये मोहब्बत भरी कहानी है ना। जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से आके अनाज लिया, मक्का के दुश्मनों ने उस शख्स को जो उनके सताने की वजह से मक्का छोड़ चुका है, उनको खत लिखा जिसमें अपनी कराबत का रिश्ता दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, और दरख्वास्त की कि सुमामा के नाम यमामा से गंदम के की तरसील के लिए हुक्मनामा जारी कर दें। क्या किया होगा अल्लाह के नबी ने? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्यारे नबी से? सिराज मुनीरा किस कदर आला जर, कितना आला अखलाक। बावजूद इसके कि मक्का वालों ने मजालिम करके आपको भेजा, आपने फौरन सुमामा को पैगाम भिजवाया कहले मक्का के लिए गंदम की सप्लाई बहाल कर दे। कैसी नादर और बेमिसाल और आला अखलाक नबूवत के अलावा किसी की मिलती अखलाक की? आप खुद भी ये किस्सा पढ़िए, सही बुखारी में है 4372, फतहुल बारी में है, जादुल मार में भी है, और असीरतुन नबविया इब्ने हशाम की उसमें भी है। तो बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। हम उसी की उम्मती हैं, ऐसे ही अखलाक चाहिए। अगर कारे रिसालत करना है ना तो अखलाके रिसालत भी चाहिए। यानी अगर आज आपको मुझे काम नबियों वाला करना है ना, दुनिया में तौहीद का इत्तमाम कराना है, इब्लाग करना है, लोगों को अल्लाह से जोड़ना है ना, तो फिर अखलाक भी ऐसे ही लीजिए। इस वक्त किसी और को ना सोचिए। 3 सेकंड दे सकती हूँ बस आपको। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा अखलाक ठीक कर दे, जो कमी है अल्लाह को पता है वो दूर कर दे। यकीन करें आपने अपनी कामयाबियों के लिए दुआ कर ली। हम अपना रवैया बदल लेना तो हमारा नसीब बदल जाता है।